नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया। इससे भारतीय वस्त्र और जूते के लिए यूरोपीय बाजार खुलेंगे। यूरोपीय संघ से आयात होने वाली वस्तुएं सस्ती होंगी। इनमें लग्जरी कार, मदिरा और दवाएं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समझौते से रोजगार सृजित होंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और वैश्विक व्यवस्था में जारी उथल पुथल में स्थिरता आएगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन ने कहा, वैश्विक व्यापार में संघर्ष के बीच भारत यूरोप समझौता रणनीतिक निर्भरता कम करेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सहयोग की अपील की। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का दुरुपयोग नहीं होगा। और बुलावायो में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर सिक्स मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के बीच नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, गतिशीलता, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित कई क्षेत्रों में समझौते भी हुए। इनमें भारतीय वस्त्र और जूते के लिए यूरोपीय बाजार खुलेंगे। यूरोपीय संघ से आयात होने वाली वस्तुएं सस्ती होंगी। इनमें लग्जरी कार, मदिरा और दवाएं शामिल हैं। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया।
आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा रक्षा साझेदारी भारत यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएगी।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के साथ वे गतिशीलता बढ़ाने पर भी कार्य कर रहे हैं।
इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी वैश्विक हित में है और भारत यूरोपीय संघ के संबंध वैश्विक व्यवस्था में चल रही उथल पुथल में स्थिरता लाएंगे। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता ने कहा कि यह सम्मेलन दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्यों के दौर में भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक साथ खड़े हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन ने मुक्त समझौता को बहुत महत्वपूर्ण यानी मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल पुथल के बीच भारत यूरोप समझौता महत्वपूर्ण निर्भरता कम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत और यूरोप में लाखों श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित होंगे। सुश्री लाइन ने असाधारण आतिथ्य सत्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होना सम्मान की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता देश की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते से एक व्यापक, गहन और मजबूत साझेदारी की नींव रखी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह भारत का 8वां मुक्त व्यापार समझौता है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार संबंधों में यह बड़ी उपलब्धि 20 साल के बाद हासिल हुई है। इस अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा साझेदारी आतंकवाद रोधी अभियानों को बढ़ावा देगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता फार्मा स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता यूरोपीय संघ में 572 अरब डॉलर के फार्मा और मेडिटेक बाजार तक पहुंच बनाएगा। भारतीय उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता देश के वैश्विक व्यापार संबंधों में एक रणनीतिक सफलता है और यह साझेदारी को और मजबूत करता है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि इस समझौते के माध्यम से 99% से अधिक भारतीय निर्यात के लिए प्राप्त अभूतपूर्व पहुंच भारतीय उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की ने रणनीतिक महत्व और दीर्घकालिक महत्व के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को बधाई दी। भारतीय निर्यात संगठन ने भी इसे ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चाओं में भारत यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी की गहराई दिखती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ में भारतीय निवेश लगभग 40 अरब यूरो तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में भारत और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
इसे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट्स उसमें नए अवसर बनेंगे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बजट सत्र कल से शुरू होगा, 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में योगदान करें।
केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण आज नई दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और बजट तैयारियों में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सत्र की पूर्व संध्या पर आज संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट परिचर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए दिशा निर्देश शिक्षा परिसर में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हैं और इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी कार्यवाही संविधान के दायरे में ही की जाएगी।
डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा और ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दक्षिणी गोवा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का चौथा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अरब डॉलर के सौदों की घोषणा की है।
इनमें प्रमुख रूप से बीपीसीएल और ब्राजील की पेट्रोबास के बीच 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का नवीकरण अनुबंध शामिल है। ऊर्जा पोर्टफोलियो में और विविधता लाते हुए मंत्री ने कनाडा के साथ एक नए मंत्री स्तरीय संवाद का खुलासा किया, जो महत्वपूर्ण खनिजों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर केंद्रित है। तकनीकी मोर्चे पर इस कार्यक्रम में स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ड्रोन का शुभारंभ और एलएनजी जहाजों के निर्माण के लिए जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ एक बड़े जहाज निर्माण सहयोग को भी देखा गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत 2035 तक विश्व के शीर्ष चार सेमीकंडक्टर विनिर्माण देशों में शामिल होने की राह पर अग्रसर है। नई दिल्ली में स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय है राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठा युवा हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि यह रैली भारत के युवाओं में कर्तव्य अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना दर्शाती है। उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड हमले के मामलों की संख्या और अदालतों में उनके स्थिति सहित कई तरह की जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने पीड़ितों की सहायता के लिए पुनर्वास उपायों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। असम के बरपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव के पलटने से 7 यात्रियों के लापता होने की आशंका है। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल और मछुआरों की टीम बचाव अभियान में लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि देश की स्वदेशी प्रणालियां भारत की परिचालन तत्परता को मजबूत कर रही हैं। नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अभिनंदन समारोह में रक्षा मंत्री ने यह बात कही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर उसके झूठे बयान को आज खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर जम्मू कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर सिक्स चरण में बुलावायो में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। भारत के 353 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 38वें ओवर में 148 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए उधम मोहन और आयुष महात्रे ने सर्वाधिक 3-3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 352 रन बनाए थे। भारत का अगला मुकाबला 1 फरवरी को पाकिस्तान से होगा। उधर महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 18वें ओवर में 7 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कल शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों और सिक्किम में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया। इससे भारतीय वस्त्र और जूते के लिए यूरोपीय बाजार खुलेंगे। यूरोपीय संघ से आयात होने वाली वस्तुएं सस्ती होंगी। इनमें लग्जरी कार, मदिरा, दवाएं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समझौते से रोजगार सृजित होंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और वैश्विक व्यवस्था में जारी उथल पुथल में स्थिरता आएगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन ने कहा कि वैश्विक व्यापार में संघर्ष के बीच भारत यूरोप समझौता रणनीतिक निर्भरता कम करेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सहयोग की अपील की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।